सब प्रकार से उनका कल्याण करें। मैं यहाँ से आप लोगों रामचंद्र जी ने बतलाया, आज करीब 3.5 महीने पहले यहाँ से ही बॉम्बे और इटली इत्यादि होता हुआ 3.5 महीने के बाद में मैं यहीं पर आ रहा हूँ। लोग वहाँ पर मानो भूखे प्यासे बैठे हैं हमारी भारतीय संस्कृति का पानी पीने के लिए। वहाँ पर 5 आदमियों का मिलना एक सभा में बड़ा भारी कठिन है। यदि आ जाए सभी बहुत हो गए, और मेरे लिए 500-500 लोग सभा में आते थे, कम से कम 7 दिन का प्रोग्राम, उसमें कुछ बोलने का समय मिलता था। 6 बजे सब लोग छोड़ करके काम आ जाते और 6 बजे से लेकर के 5:30 बजे से और 8:30 बजे तक समाप्त करता था, 2.5-3 घंटा। 5-6 दिन में बोलने में कुछ भूमिका बनती थी, लोग समझते थे उसको, बड़े प्रेम से सुनते थे। बहुत लोगों ने हरि नाम लिया, बहुत लोगों ने दीक्षा लिया, बहुत से लोगों ने सब प्रकार से सहायता। मुरझाए हुए जो फूल थे जो स्वामी जी ने बगीचा लगाया, उसके फूल भी सूख रहे थे, उन लोगों ने भी हरि कथा रूपी पानी पाकर और बड़े प्रसन्न हो फिर से उनका चेहरा खुल गया। जो लोगों ने गले से माला उतार दी थी, जो हरिनाम माला भी छोड़ दी थी, भगवान का स्मरण भी नहीं करते थे, जो महाराज जी के समय में ब्रह्मचारी लोग थे, सन्यासी थे और बड़े बड़े कारोबारी लखपति करोड़पति हो रहे हैं, छोड़ दिया था, वो लोग भी धीरे धीरे आने लग गए। बहुत सफल प्रचार श्रीमद् भागवत, वैसे कभी चैतन्य चरितामृत से, कभी श्रीमद् भागवत से, उपनिषदों से लेकर हरि कथाएं करता था, लोग बड़े प्रभावित होते थे। श्रीमद् भागवत में पहले ही अध्याय में ऐसा लिखा गया, 60,000 ऋषि महर्षि लोग कलयुग आने से पहले नैमिषारण्य में एकत्रित है, विचार चलने लग गया कलयुग आ रहा, बड़ी भयंकर दशा होगी, स्त्रियां अपने पति को तलाक देगी 10-10 बार, पुरुष लोग भी ऐसे तलाक देंगे, बेटा किसका है ये भी चिन्ह नहीं रहेगा, लोग अपनी पत्नी पर अपने पिता पर विश्वास नहीं करेंगे, भाइयों पर विश्वास नहीं करेंगे, कुत्तों पर विश्वास करेंगे, इसलिए कुत्ते रखेंगे, कुत्ते की समाधि देंगे, कुत्ते के लिए अस्पताल बनाएंगे, उसके लिए लाखों डॉलर्स की वो सब प्लान बनाएंगे, तरह तरह के भोगों में फंसे हुए हैं, हमें भारत से बाहर गया, सारा पृथ्वी घूमा, किंतु हमको ये नहीं मालूम हुआ कि मैं विदेश में हूँ। ऐसे ही पर्वत, वहाँ पर भी पहाड़, वैसे नदियाँ, वैसे ही गाय बैल घोड़े गधे, वैसे ही मनुष्य भी, वैसे ही कुछ रंग जरूर कुछ अदलता बदलता हुआ, किंतु बुद्धि और ये सब इसमें कुछ भी बदल नहीं देखा, बल्कि वहाँ कुछ स्वर्ग जैसे चीज़ें देखी। सब लोग इतने भोगों में आकृष्ट हैं, उनको समय नहीं है भजन करने का या भगवत चिंतन करने का, जो भगवान क्या चीज़ है और हम भविष्य में कैसे सुखी होंगे, उनको फुर्सत नहीं है, दिन रात भोगों में मत कर रहते हैं, तो भी उनमें से सुनने के लिए पूछा। इसलिए मैं कभी भी विदेश कभी मुझको मालूम ही नहीं हुआ, एक ही पृथ्वी वहाँ पर भी देखा जो यहाँ पर, एक ही सूर्य जो वहाँ देखा वही सूर्य यहाँ पर भी, एक ही हवा चल रही थी जो भारतवर्ष में चलती है, कभी ठंडी कभी गर्मी, एक ही तरह के पेड़ पौधे भी थोड़ा सा उनका आम नहीं तो वहाँ पर दूसरे पेड़ हैं, किंतु सभी एक ही चीज जैसे, और भोगों की प्रवृत्ति भी एक ही जैसे, बल्कि विदेशों में और भी अधिक, और वहाँ पर सुख सुविधाएँ सब प्रकार की अधिक है, वहाँ पर अधिक सुंदर सुंदर लोग हैं, सुंदरियाँ लड़कियाँ हैं वहाँ सुंदर भी। देखो ना, तुम्हारे बीच में एक बैठी हुई है, क्रोएशिया की है, ऐसे सब लड़के लोग हैं, कोई सुखी संसार में नहीं है। तो यही बात उनमें चल रही थी। सुत गोस्वामी जो हमारे सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं वो बैठे हुए हैं, और उनसे ऋषि लोग, शौनक आदि ऋषि लोग, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भक्त भक्तिमान सब लोग बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। घोर कलयुग आ रहा है, जो बड़े बड़े काल में जाएंगे वो गुरु होंगे, बड़े बड़े संत वही काल आएंगे, जो भगवान को भी नहीं मानेंगे, माता पिता को भी नहीं मानेंगे, गीता और भागवत भी नहीं मानेंगे, कहेंगे जी मैं ही भगवान हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं तुमको वो लोग वृंदावन का पासपोर्ट और वीसा दे दूंगा। जो गीता भागवत भी नहीं मानते हैं ऐसे लोग, आप लोग बौद्ध जानते हैं, भारतवर्ष से वहाँ से खदेड़ा गया, जो कहते हैं ये जगत शून्य से पैदा हुआ और शून्य में मिल जाएगा, हम लोग वही शून्य हैं, देखते हैं कि शरीर हमारा है, देखते हैं कि हमें, तभी कहेंगे जो शून्य है। ऐसा चारों तरफ में खूब जोर से आजकल प्रचार हो रहा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में देखा, विशेष करके फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादि में ऐसे सब धर्म प्रचारित हो रहे हैं। भगवान की कोई सत्ता तक नहीं मानते हैं और अपने को गुरु करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, जो गीता भागवत नहीं मानते ऐसे बाल जोगेश्वर इत्यादि कितने हरे पड़े हैं, कितना नाम गिनाया जाए, केवल गाल बजाने वाले साधु माने जाएंगे, तालमान लेकर के उस समाज बना लेंगे, हारमोनियम और ये सब लगा करके, और कुछ गान से लोगों को तृप्त कर देंगे, भक्ति से उनका कोई संबंध नहीं। तो इसलिए उन लोग बांट करके बातचीत कर रहे थे, घोर जो कलयुग आ रहा है कैसे बचा जाए, उनको चिंता थी, हम लोगों को चिंता नहीं है, हम तो सुख से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर रहे हैं, भोगों में आसक्त हैं, कभी कभी हाहा करके मर भी जाते हैं, कोई चिंता नहीं है। और उन लोगों को चिंता हुई, लाखों वर्ष की आई तभी चिंता करें कि घोर कलयुग आ रहा है क्या होगा, आत्मधर्म छिप जाएगा, आत्मा का धर्म, और संसार के ये सब गंदे गंदे ये सब चीज़ें आएंगी, चिंता कर रहे हैं। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सुख गोस्वामी से पूछा, देखो घोर कलयुग आ रहा है, धर्म कर्म कुछ नहीं रहेगा, उसमें हमें क्या करना चाहिए? आप वेद उपनिषद सबके जानने वाले, भागवत गीता महाभारत इत्यादि के पुराणों के ज्ञाता हैं, आपकी बुद्धि भी बड़ी निर्मल है, आपकी बुद्धि परिपक्व है, उसका सार समझ सकते हैं। आजकल गीता हम समझते हैं कि हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, किंतु गीता में क्या है ये एक नहीं जानते, ठीक उसका उल्टा विपरीत बुद्धि रखते हैं। ठीक भगवान कृष्ण को गीता मतलब कृष्ण ने भगवान ने उपदेश दिया, कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, उनके उपदेशों को नहीं लगते और भोगों में आसक्त हैं। तो इस तरह से विचार करने लगे क्या करना चाहिए। उस समय में सुत गोस्वामी ने अपने गुरु को प्रणाम कर और कहा, देखो संसार में यदि कोई सुखी होना चाहता है, सबई पुरुषा परो धर्मो जतो भक्ति रघुकजे अह दुख अव्यवहिता जा भक्ति। देखो ये विश्व कोई रचना करने वाला, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला वही परम तत्व है, कृष्ण ही परम तत्व हैं, भगवत्ता की चरम सीमा वो कृष्ण हैं, गीता के जो वक्ता हैं स्वयं, और भागवत में जिनका लीला चरित्र बतलाया गया है, जिसको यशोदा मैया ने ओखल में बांध दिया प्रेम से, और जिनको सखाओं ने जिनके ऊपर में घोड़े बना करके चढ़े, और गोपियां हमने चरणों में झुका दिया, वो साधारण नहीं, वही परम तत्व है। आजकल जितने अधिकांश लोग बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, कृष्ण को स्वयं भगवान नहीं मानते, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं, कभी शंकर को, दक्षिण भारत में गणेश को, कहीं पर काली जी को, दुर्गा जी को, तरह तरह के उपासनाओं के केंद्र बनाए, ठीक उनकी बुद्धि नहीं। गीता भागवत यदि मानते, वेदों को उपनिषदों को मानते, तो उनकी बुद्धि ठीक रहती। इसलिए यदि कोई गीता भागवत नहीं मानता है, उसके अनुसार में नहीं चलता है, कृष्ण की भगवत्ता राम की भगवत्ता स्वीकार नहीं करता है, उसे दूर रहने की चेष्टा करे। लाख उपदेश देने वाला हो, रंजक मनोरंजक, तो भी उसकी बात नहीं सुनना है। जो गीता बात की मानता हो, भगवान का खुद भजन करता हो, उसकी बात सुनने। तो उन्होंने कहा, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रथ, कृष्ण ही भगवत्ता की चरम सीमा है। पहले ये समझो, भगवान 10-20 नहीं है, ये गॉड खुदा कृष्ण राम ये अलग नहीं है, निशिंह कल्कि वामन जगन्नाथ देव ये सब अलग अलग नहीं है। हमारे भारतवर्ष में एक ही कृष्ण की मांग जाता है, और उनके बाकी सब प्रकाश है। ऐसा नहीं जैसे मुसलमान लोग कहते हैं या ईसाई लोग कहते हैं, हम लोग कहते एक गॉड या खुदा है। भारतवासियों के, हिंदुओं के, सनातन धर्मियों के अलग अलग बहुत से देवता हैं, बात ऐसी नहीं है, लोग नहीं समझने से ऐसा कहते हैं। एक वृक्ष है, उसमें 10 डाले हैं मोटी मोटी, और फिर डालों के शाखाएं हैं, और उसमें शाखाओं के भी प्रशाखाएं हैं, और उनमें पत्ते हैं, किंतु पत्ता से लेकर के फल फूल से लेकर के जड़ से लेकर के डालियां अलग कोई चीज़ नहीं है, एक ही है। वैसे एक ही कृष्ण ही परम तत्व है, इस चीज़ को समझो। कृष्ण की प्रसन्नता होने से ही, उनकी भक्ति होने से ही जगत का कल्याण। जो इस चीज़ को नहीं समझते, वे पत्ते को भी जैसे देवता हैं, उनको भी भगवान मान लेते हैं, कोई डाल को भगवान मान लेते हैं, कोई फल ही को भगवान मान लेते हैं। इसलिए ऐसा ये ठीक समझो कि कृष्ण ही परम तत्व है। ईश्वर परमा कृष्ण साक्षात विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकाल, ये कृष्ण को समझो। कृष्ण की भक्ति करने से जितने देवता देवी या भगवत तत्व है, उन सबका उनका भजन हो जाए। ये क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट जेसस कहते हैं, जेसस क्राइस्ट, क्राइस्ट और कोई नहीं है, कृष्ण से कृष्ण, कृष्ण ही का, उड़िया लोग उसको कृष्ण कहते हैं, कोई उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टस उसको कहने लगे, क्योंकि शुद्ध उनको उच्चारण नहीं होता कृष्ण का, और फिर क्रिस्टस से फिर क्राइस्ट हुआ। इस तरह से कृष्ण ही का नाम ये कृष्ण है, ऐसा ही समझिए। इसी तरह से जितनी भी भगवत्ता हैं हमारे भारतवर्ष की भूमि से निकली, समझ नहीं सके, उसका उल्टा उल्टा प्रचार करने लगे। इसलिए आप लोग ठीक समझेंगे कि कृष्ण की आराधना करने से ही सबकी आराधना हो जाएगी। उन्होंने सवई पुंसा, निश्चित रूप से जितने भी जीव हैं, हम सबके उद्गम स्थल वही, हम लोग उनके पार्ट और पार्सल हैं, हम उनके अंश विभिन्न अंश, हम उनसे अलग नहीं हैं, किंतु वर्तमान स्थिति में हम उनको भूलने से ये हमारी दुर्दशा है। कोई स्त्री कोई पुरुष, कोई गधे कोई शूकर कोई कुकर, रुपए पैसे से, धन संपत्ति से, सांसारिक सुखों से ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये अलग चीज है। उसमें रहते हुए भी हो सकता है यदि गुरु कृपा हो, और उसे अलग रहते हुए भी नहीं होगा यदि ऐसे तत्व के गुरु न मिले। इसलिए इस चीज को समझिए, हम कृष्ण के नित्य दास दासी हैं, उनको भूलने से हमारी ये दुर्दशा हुई है। अभी कुछ दिनों के बाद ही में, अभी इसमें कोई कोई जवान भी हैं, कोई 50 के हैं, कोई 60 के हैं, अभी 70, 75, 80 आने दीजिए, और उसके बाद में 85 और 90 आने दीजिए, लकड़ी लेकर के भी चलना मुश्किल हो जाए। और 100 वर्ष होते होते ये सारा संसार छोड़ देना पड़ेगा, वैभव छोड़ देना पड़ेगा, एक उसकी सी एक रोया भी उस पर लेकर के नहीं जाना है, ये समझ लो। अभी अभी संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं, व्यवसाय के बारे में कुछ भी काम नहीं आएगा, ये समझ रखो। यही भगवत तत्व ज्ञान आया। यदि मरते समय में कृष्ण का एक ही नाम हो गया तो बेड़ा पार है, अन्यथा तो फिर इसी जंजाल में पड़ना है, और भी ना जाने क्या पूरी दशा होगी। इसलिए कहते हैं समस्त वेदों शास्त्रों का तात्पर्य लेकर के कह रहे हैं, मनुष्य मात्र का यह प्रथम कर्तव्य है कि भगवान का भजन। वो भगवान कौन है? कृष्ण साक्षात है, निश्चित रूप में, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि कोई ऐसा भजन करता है भगवान का, सर्वगुरु गुरु पदाश्रय करके, गुरु माने कैसा? तत्व ज्ञान से परिपूर्ण, बहुत हम्बल हो, नम्र विनयी हो, सम में सम बुद्धि हो, जीवों के दुख से दुखी हो, उनसे रुपए पैसे और मान सम्मान की भावना देने वाले न हो, सांसारिक आसक्तियों से दूर हो, ऐसे गुरु यदि मिल जाए तो उनसे तत्व ज्ञान ग्रहण करके भगवान का भजन। बिन गुरु भजन न हो, बिना गुरु के भजन संभव नहीं है। वो भी कुछ उन्नत अनुभव प्राप्त हो, जो खुद जिस व्यक्ति को भगवान का अनुभव नहीं है, भक्ति का अनुभव नहीं है, भगवान का नाम लेते लेते जिनके हृदय द्रवित नहीं हो जाता, आंखों में आंसू नहीं उमड़ पाते हैं, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जिनको अपने बेटे के प्रति जैसा प्रेम है भगवान के प्रति एकदम वैसा नहीं है, ऐसा लोग क्या कर सकते हैं हमारा कल्याण। इसलिए भगवान में ऐसी भक्ति वाला हो, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हो, सांसारिक आसक्ति उसमें नहीं हो, ऐसा यदि गुरु मिले तो प्राण दे करके भी उसे खरीद लो, और ऐसे गुरु का तत्व ग्रहण करके, उसे तत्व ग्रहण करके अपने जीवन को उसमें लगा। गृहस्थ में त्यागी में अंतर कुछ नहीं है, अंतर है जीविका निर्वाह का। गृहस्थ भी संसार न रहते हुए उसे आसक्त न रहे, और त्यागी भी त्याग करने का अभिमान छोड़ करके दीनहीन बन करके भगवान का भजन करे। जिसमें अधिक प्रेम है वही बड़ा है। एक बंदर को यदि प्रेम है हनुमान जैसा तो जगत पूजी है, एक भालू को यदि भगवत प्रेम है तो सुग्रीव और कौन थे जंबुआ, ये लोग और भी प्रिय हैं। यदि स्त्री को यदि है कोई किसी को भगवत प्रेम तो कैसी गोपियों को देखो, जिसके चरणों में झुकते हैं कृष्ण स्वयं भगवान होकर। त्यागियों में नारद इत्यादि हैं, देखो ये सब आदर्श के स्थल। इसलिए जहाँ भी रहो स्थाने स्थिता तनवांग बनो, जहाँ भी रहो वहीं से भगवत भजन आज से ही आरंभ करो। मांस मछली प्याज लहसुन ये सब चीज़ों को त्याग करके, शुद्ध गुरु पदाश्रय करके और भगवान का भजन, उसमें कोई कठिनता नहीं है। अरे उनके लिए प्रार्थना करोगे, कीर्तन करोगे, उसमें क्या कष्ट है? पलंग पर बैठे हो, भगवान का नाम कर रहे हो, उसमें क्या लगता है तुम्हारा पैसा कहाँ खर्च? गुरु ने ये कहता कि हमें पैसे दे दो और अपने स्त्री को पैसे मत देना और उसे आसक्ति मत रखना, और अपने क्या करते हैं दूसरों स्त्रियों से अपना बढ़िया शक्ति है, रुपया पैसा उनको दे दो। क्रिश्चियनिटी के अवनति का कारण क्या है आजकल क्रिश्चियन ईसाई धर्म का। मैं गया वेटिकन में गया जहाँ पर सबसे बड़ा उनका स्थान है और सब जगहों में गया जहाँ पर कि लाखों लोग उनकी बातें सुनते हैं। आजकल किसी को विश्वास नहीं, वो कहते थे या कहते हैं अभी भी, ओ तुम्हारी धन संपदा हमें दे दो और तुम्हें मैं सब पापों से छुटकारा दिला दूँगा, और ले करके अपने भोग करते हैं, गैया और बछड़े काट करके खाते हैं और दूसरों का माल हड़पते हैं। इसे सब लोगों को नफरत हो गई। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे लोग हो आ गए, इसलिए ये सबकी औनति होने लगी थी। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए, वैष्णव ऐसा नहीं होना चाहिए, निरपेक्ष हो अनाशक्त विषयों में, चाहे गृहस्थ हो त्यागी हो स्त्री हो पुरुष हो, इसका कोई अंतर नहीं। जो जहाँ है वहीं से भगवान का भजन करे, विषय में अनाशक्त हो, कर्तव्य करो। स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, पति के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन तो करो, आसक्त मत हो और भगवान का भजन। उसमें कुछ पैसे की जरूरत नहीं है। क्या पैसे की जरूरत है? हम भगवान से प्रेम करेंगे तो इसमें पैसे से होगा? एक आदमी लाख रुपए का सोने का अलंकार बना दिया ठाकुर को और अभिमान में पड़ रहा है, देखो ठाकुर जी को मैंने कैसे श्रद्धा दी। इसे भगवान ने प्रेम से मिलेंगे। शबरी को देखो तो कैसे नीच जाति और प्रेम से कैसे भगवान को वशीभूत कर दिए, बड़े बड़े सन्यासियों के पास में नहीं गए। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहें, स्थाने स्थिता तनवांग मनोभी, अपने तन से मन से वचन से उनका स्मरण करें और इस समझें ये दुनिया दो दिन की है, फिर अंधेरी रात। आसक्ति मत कीजिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग भी हैं, वो उसी तरह से रहें, त्याग और ब्रह्मचर्य के साथ में रहें और भगवान के प्रति उनका अनुभव, तब तो ठीक होगा, और नहीं केवल दिखलाने से नहीं। तो वो कह रहे हैं सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रे अहेतुक का प्रतिहता या मास। भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भगवान से कुछ लेना देना का कारोबार मत करो। प्रभो बड़ी सेवा आपकी कर रही हैं, हमें पुत्र नहीं है पुत्र दे दो, संपत्ति नहीं है संपत्ति दे दो, हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा प्रभु हमारा बिजनेस ठीक करा दो, हम और भी तुम्हारी भक्ति करें। ये सब भक्ति नहीं है। हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, हमारा पति अस्वस्थ है, ठीक कर दो। ये तो तुम्हारे कर्म फलों से जैसा होना है होगा, उसमें लेन देन नहीं। अहेतु की हो, बिना कारण की भक्ति हो, प्रेम से हो। गोपियों ने उद्धव से पूछा, महाशय जी आप तो हमारे प्रियतम कृष्ण के यहाँ से आए हैं, बतला सकते हैं? हमारी प्रीति तो उनसे निस्वार्थ थी और उनका भी प्रेम हमारे से निस्वार्थ था, उनका प्रेम बहुत ऊंचा था, बतलाओ तो हमारा प्रेम कैसे ये बिखर गया, कैसे टूट कैसे गया? हमने भी उनसे कुछ नहीं चाहा और उन्होंने भी हमसे कुछ नहीं चाहा, साधारण प्रीति कैसे होती है? जो टूट जाती है जो स्वार्थमयी होती है, जैसे भौंरा एक फूल से दूसरे फूल का रस लेता हुआ चला जाता है छोड़ते हुए, स्थिर कहीं नहीं रहता। स्वार्थी पुरुष इसी तरह से इधर से उधर जाता, उसके प्रति स्थिर नहीं होती। जैसे भिक्षुक गया कहीं भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगा और उसको भिक्षा मिल गई, वहां से चलता बना एक मिनट के लिए नहीं रुकेगा। जैसे वेश्याएं रुपये के लिए किसी को अपने पास बुलाया और पैसा उसका माल हड़प लिया, उसको वहाँ से निकाल दिया, फिर दूसरे के लिए प्रतीक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ पुरुष लोग भी अपने कामना स्वार्थ अंध काम के पूर्त करने के लिए और किसी स्त्री से मिलते जुलते हैं और फिर उसका सब कुछ हड़प करके नष्ट करके जीवन और फिर उसे छोड़ करके दूसरी को, ये सब प्रीतियाँ कैसी हैं? स्वार्थ में। कोई पढ़ने के लिए गया, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ा लिखा और जब पढ़ाई समाप्त हो गई तो गुरु को छोड़ दिया, फिर एक बार कभी भी पूछने की नींव ले गया, ये गुरु जी आप कैसे हैं, ये कैसी चीज़ें हैं। ये सवाल हमारी तो पृथ्वी ऐसी नहीं थी, फिर कैसे टूट गई उद्धव? उद्धव कुछ बतला नहीं सके। गोपिया कहने हमने समझा था कि तुम उनके पास में रह करके कुछ सीखेगा, कुछ सीखा नहीं। तो जो प्रीति होती है निष्कपट, बिना किसी स्वार्थ के वो टूटती नहीं है। राधिका जी कह रही हैं यदि कृष्ण प्रसन्न हो हमको छोड़ करके दूसरी के लिए तो मैं उसकी सेवा करके कृष्ण के पास ले जाऊं। ये सब गहरी प्रीति भगवान के प्रति निष्ठ। भगवान से हम कोई प्रार्थना ना करें, यदि करते भी हैं नहीं होता है तो भी अपने सुख दुख का कारण मान करके अपने पूर्व जन्मों का कर्म, उनके साथ में निरंतर प्रीति हो और प्रीति बढ़ती है। आत्मा अजर हमारा, इस चीज को समझो, अपने कर्मों से अभी जन्म, फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, किंतु भगवान के प्रति हमारा जो संबंध है नित्य है, स्थायी है, वो नहीं बदल सकता। इस चीज को समझिए, वैभव में मत डूबिए, सुख दुख में मत डूबिए, जो कर्तव्य है उसका पालन कीजिए अनाशक्त होकर के। अब भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति हो, कैसे? तैलधारावत नैरंतर्यमयी भक्ति हो दिन रात, कैसी? ऐसी नहीं जरा रात में सो गए तो उनको भूल गए, तो कहाँ रही? दुकान में बिजनेस में गए और भगवान को भूल गए तो वो तैलधारावत अविच्छिन्न गति रही कहाँ? सोइए तब भी, खा रहे हैं तब भी उनके लिए खाइए, उनके लिए सोइए, उनके लिए जिए, उनके लिए मरिए। तैलधारावत अविच्छिन्न गति से कभी भी उनकी विस्मृति ना हो, तब ये भक्ति होगी। इस प्रकार से भगवान वासुदेव में, कृष्ण में जो भक्ति करते हैं उनको दो चीजें साथ साथ आती है, तीन चीजें, साथ ही साथ उनको ज्ञान और साथ ही साथ वैराग्य संसार से, और तीसरी भगवान की भक्ति प्रेममयी भक्ति, तीनों एक साथ। ऐसा नहीं कि भक्ति पहले ज्ञान होगा और इसके बाद में वैराग्य आएगा फिर भक्ति आएगी, या उल्टा सीधा, तीनों एक साथ में। जैसे हम खाते हैं, हरिनाम कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, कुछ लाभ नहीं होता तो दिन के बाद में उसे छोड़ देते हैं। जैसे हम खाते हैं, प्रति ग्रास खाने के साथ साथ में पेट भरता है, और पेट भर जाने पर कोई भी चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती और उसे छोड़ देते हैं, और शरीर तृप्त हो जाता है, बेकार आता है। वैसे भगवान का भजन करने से, जो नाम करता है, भगवान का भजन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसकी आत्मा संतुष्ट होगी, कभी भी आत्मा उसकी अप्रसन्न नहीं रही, सब समय प्रसन्न। हम देखते हैं बहुत भजन करने वाले जो नाम करते हैं बड़े दुखी होते हैं, बिलबिला रहे हैं, ये तो भगवान का भजन का फल है। और भगवान का भजन करते हैं संसार में आसक्त तो डूबे हुए हैं, तो देख कहाँ भजन हुआ? ये सब भजन तजन नहीं है, मैं आप लोगों को धोखा देना नहीं चाहता। भगवान का भजन करेंगे शुद्ध रूप से तो संसार से विरक्ति आएगी, किंतु कर्तव्य का ज्ञान बोध रहेगा। ऐसा नहीं जब कर्तव्य को भूल गए, विरक्ति भी आएगी, किसी चीज में भी आसक्ति अब नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी, कारण क्या? अरे वो आसक्ति उठ करके कृष्ण के चरणों में लग गई है ना, तब आसक्ति रही कहाँ जो इधर में लगे। इस चीज को समझिए, आसक्ति और मन तो एक ही है ना, उधो मन न भयो दस बीस, एक भूतोषु गयो श्याम संग वो आराधो ईश। अरे मन तो उद्धव एक ही था, तुम कहते हैं जो भगवान की आराधना करो, हमारा मन तो एक ही था, वो कृष्ण जब गए तो उनके साथ साथ में मन चला गया, अब हम किसकी आराधना हम करें? और दूसरा जो ब्रह्म है निराकार ब्रह्म, इसकी आराधना कौन करे? तो ऐसे ही आसक्ति तो एक ही है न मन की, वो आसक्ति यदि लग गई कृष्ण के चरण में अब रही कहाँ, इसलिए वो संपूर्ण रूप से वैराग्य हो गया। इसको स्वाभाविक वैराग्य कहते हैं। महाराज जनक समस्त पृथ्वी के मालिक, उनको कहीं भी आसक्ति नहीं, ऐसा हो आसक्ति उसकी दूर हो जाएगी। वैराग्य इसी का नाम है वैराग्य, विशेष रूप से कृष्ण के चरणों में अनुराग। और साथ ही साथ क्या होगा, जब कृष्ण के चरणों में तुम्हारा अनुराग लग गया तो रहा कहाँ, जो संसार में लगे नहीं लगे। दो दिन हरि नाम किया कहा, जैसे रसगुल्ला जैसे है ना, बस आ गया, खा लिया, बस हो गया, हम चाहेंगे वही पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता। भगवान धीरे धीरे तुम्हारी सांसारिक आसक्तियों को काटेंगे। संत छिंदंती एवं मनोव्यासंग उक्ति भी, अपनी वाणियों से गुरु हमारी आसक्ति को तलवार धार की तरह काटेंगे। तुम दुख को ही सुख समझ रहे हो, यह गलत है, इस चीज को समझो, यह संसार सत्य नहीं है, संबंध सब अनित्य हैं। दो दिन का कृष्ण के साथ में संबंध, इस चीज को समझ करके भगवान का नाम कीजिए। कभी भी कमजोर मत बनिए, दो दिन किया छोड़ दिया, इससे कुछ मिला ही नहीं, हमारी समस्या बढ़ रही है। अरे समस्या की तो तुमने सब पहले जन्म में बीज बो दिया, इसलिए इन चीजों को समझ करके और दृढ़ता के साथ में भगवान का भजन कीजिए। मीराबाई जब संसार छोड़ दिया ना, सबको छोड़ करके बड़ी सुखी हो गई, पति उसके पीछे अब दौड़ रहे, अजय अब नहीं। इसी तरह से भगवान का भजन कीजिए आप और सुखी रहिए। संसार के विश्व में हमने देखा करोड़ों से करोड़ों पति लोग, कोई सुखी नहीं है। इसलिए आप लोग बिना पैसे वाला ये नुक्शा किंतु बहुत अव्यर्थ औषधि है भगवान का भजन का। तो साथ साथ में विरक्ति पैदा होगी जरूर, भगवान के चरण में अनुरक्ति होगी और साथ साथ में तत्व ज्ञान भी होगा। भगवान का भक्त मूर्ख होता है ऐसा नहीं, ये गोपियाँ कभी स्कूल में नहीं गई होंगी, गई कोई गोपी? और उद्धव जैसे बड़े बड़े ज्ञानी और नाथ के छक्के छुड़ा दिए, छक्का छुड़ा दिया, देखते रह गए और अपने प्रभु को भी बुला ले आए। की कथाओं को इसी प्रकार से सुनते हैं और ठीक उसका पालन करते जाते हैं सहज रूप में, क्या होता है अंत में उसके सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। एक मन है, लाखों जन्म में अपने मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हवा को कंट्रोल करना सहज है मन को नहीं। और यदि आप भगवान के शरणागत हो गए, हे प्रभु मैं आज का आपका शरण लिया, बस मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। किंतु सच्ची सुजाशा होना चाहिए, ये सब उपाय हैं, वही कह रहे हैं। यदि कोई भगवान का शरण लेकर के भगवान की कथाओं को सुनता रहे, उसके धीरे 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 मल दूर हो जाते हैं, आसक्ति दूर हो जाती है संसार, भगवान के चरणों में प्रीति होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, भागवत जो हैं वैष्णव परम वैष्णव, उनसे भागवत की कथा सुन करके उनका चित्त और निर्मल हो जाता है और उनको भक्ति ऐसी उत्पन्न होती है जिसके द्वारा स्वयं वशीभूत हो जाता है। इसलिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते रात में अपना काम करते हुए भी भगवान का नाम कर सकते हैं। किंतु कुछ समय तो निकालो जो सवेरे शाम कुछ बैठ करके उनकी चिंता कर सकें। इस तरह से आज बहुत रात हो गई, 9 बज गया, मैं 9 बजे तक कभी नहीं वहाँ पर बतलाया। तो आगे से हम लोग ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें साधारण लोग भी आ सकें, 3-4 दिन का 5 दिन का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें भगवान की कथाओं को अपने तारतम्य में से सबको कहें, कहा जाए, सब लोग इसको अच्छी तरह से सुने। तो अभी मैं प्रसन्न हूँ कि आज यहाँ पर बहुत काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं केवल एक दिन में ही, आगे से आप लोग और अधिक आएंगे, हम भी समय लेकर के आएंगे। बस हरि नाम करेंगे, किसी के पचड़े में मत पड़े, और हरि नाम में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये समझ रखिए। यदि किसी वैष्णव और भगवान के चरणों में आपने अपराध न किया तो अनजान में हो, जान करके हो, अनजान में हो, सोते उठते बैठते किसी प्रकार ये नाम आ जाएगा नर मात्र को, एक बार भी जीवन में आ गया तो उद्धार कर देगा, इसको याद रखो। और एक और भी याद रखो, कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम है, किंतु राधा जी के बिना कृष्ण की आराधना वो श्रेष्ठ नहीं, इसको भी याद रखो। राधा जी की प्रमुखता दे करके कृष्ण की भजन, वही शक्ति उनकी है। यदि राधा जी नहीं रही तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा, आप वही ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म हो जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस चीज़ को भी समझ। इसलिए सहज सहज रूप में जानते हूँ नहीं जानते हूँ हरिनाम करेंगे, किंतु प्याज लहसुन मदिरा धूम्रपान और मांस मछली ये सब को छोड़ करके, यदि विदेशी लोग छोड़ करके कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, उससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, भजन भी कर सकते। और एक बात याद रखिए, सुख दुख जो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे मिल रहे हैं उसको हंसते हुए झेलो, उसमें घबराओ नहीं, यही जन्म पहला और अंतिम नहीं है, पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मों से हमें आ रहे हैं, अब इस जन्म में उसको सुधारेंगे कैसे, सबसे प्रतिमय व्यवहार रखें, और यह तभी संभव है यदि कृष्ण की भक्ति हो, अन्यथा नहीं हो सकता। इस तरह से समझ करके भगवान का भजन कीजिए और जीवन में सुखी रहिए, परलोक में भी सुखी रहिए, यही भागवत गीता और उपनिषद वेद पुराणों की भाषा। गौर प्रमा कृष्णदास महामंत्र।